भाग्य विधाता इस जग में भाग्य बनाने आया। ब्रह्मा ने अपने बच्चों को शिक्षाओं से सजाया। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी।
ओम शांति। विशेष इस जनवरी मास में 18 जनवरी का अपने इस ईश्वरीय परिवार में विशेष महत्व रखता है। आप सभी बाबा के घर में साकार बाबा के अंग संग रहने वाले भाई बहनों के, मुख्य भाई बहनों के अनुभव सुन रहे हैं। ड्रामा में साकार के समय मेरा लौकिक पढ़ाई के अंदर जीवन व्यतीत हुआ, लेकिन बाबा की पालना पत्रों के द्वारा मुझे मिलती रही। बाबा रोज दूसरे तीसरे दिन अपने हस्त लाल हस्तों का पत्र, बहुत सुंदर बाबा की लाल पेंसिल थी और बड़े बड़े अक्षर में बाबा खुद अपने हाथों से पत्र लिखते थे और हर पत्र में मेरा बहुत नाम हाईलाइट करके लिखते थे। बाबा जाने जाननहार है, हम सब जानते हैं। हर एक बच्चे की बायोग्राफी को बाबा जानता है। तो साकार के समय कुछ कारणों से मैं मधुबन नहीं आया, लेकिन जब अव्यक्त बाबा के सामने पहली बार 71 में आना हुआ तो बाबा अपने रूम में, छोटा रूम जो बाबा का कमरा था, अभी तो थोड़ा बड़ा रूप उसका है, लेकिन उस छोटे रूम में बाबा एक नीचे गद्दी जो पड़ी है उस पर आए थे और मेरी लौकिक बहन बाबा को मेरा परिचय देने के लिए, मिलाने के लिए लेकर के गई। वो दिन मुझे याद आते हैं कि मैं पहली बार अव्यक्त बाबा से सन्मुख में मिल रहा था अकेले ही। तो बहन ने जब मेरा परिचय देना शुरू किया तो बाबा ने बीच में ही मुस्कुरा करके, बाबा एकदम चुप करके करा के बोलता है, बाबा जानता है। और बाबा की वो इतनी प्यार भरी दृष्टि थी, इतना उसके अंदर रहस्य थे, जो अनुभव हुआ कि बाबा मुझे जानता है। तब से लेकर के मैं मधुबन में रहने का संकल्प कर लिया, जबकि मेरी आयु उस समय केवल 15 साल थी। बाबा के सामने आते ही, बाबा को देखते ही जैसे अपनेपन की एक भासना, अपनेपन की फीलिंग होती है, ऐसे ही बाबा की दृष्टि से, प्यार से, मुस्कुराहट से, और उस समय दादियों की जो भावनाएं थी, पालना का जो स्वरूप था, बड़ा वंडरफुल था। उस दिनों को याद करते हुए आज मैंने टॉपिक रखी कि ब्रह्मा बाबा कैसे होंगे जब दादियों ने उनको इतना फॉलो किया, इतना दातापन का स्वरूप था। कि मैं एक गांव से आया हुआ बिल्कुल छोटा बालक, और आते ही मुझे इतना भरपूर किया, स्थूल सूक्ष्म हर प्रकार से। हमारी एक संतरी दादी थी, संतरी दादी बाबा के बहुत निकट रहती थी और सारा स्टॉक जो है कपड़ों का वो संभालती थी। जो भी मधुबन निवासियों को हर वर्ष कपड़े मिलते तो दादी हमेशा उन स्टॉक को संभालती थी और मुझे पहले पहले ही बुलाया और आती ही कहती है अपनी पेटी लेकर के मेरे पास आओ। अब पेटी में गांव से मैं आया था, लोहे की अटैची थी छोटी सी, तो उसमें एक दो जोड़ी कपड़े थे और मैं आया ही एक 15 दिन के लिए, एक मास के लिए था। तो दादी ने कहा तुम यहाँ इसको छोड़ के जाओ। मैंने कहा पता नहीं मेरी क्या चेकिंग हो रही, कोई बात होगी। लेकिन मैं जब दूसरे दिन दादी से मिलने गया तो फुल अटैची कपड़ों से भरी हुई थी, सब प्रकार के वस्त्र थे, विशेष पैंट सूट थी। तो मैंने कहा दादी ये मैं क्या करूँगा। बोली नहीं इसको तुम रोज पहनना, गांव में अभी जाएगा ना तो ये पहन करके स्कूल में जाना और बीच बीच में जब त्योहार आते हैं तो जरूर पहनना। तो मैंने कहा दादी ये तो बहुत ऊंची क्वालिटी की पैंट्स हैं सूट्स हैं, गांव में तो ऐसे कोई पहनते ही नहीं है, मैं इसको कैसे पहनूंगा, मैं नहीं ले जाता। बोला नहीं नहीं तुम ले जाओ। उसके पीछे एक रहस्य था, राज था। एक तो उनकी दातापन की एक भावना थी, बड़ी दिल थी, हर प्रकार से संपन्न करके भरपूर करके भेजना। जबकि आप सब जानते हो यज्ञ बहुत बेगरी पार्ट से गुजर रहा था। तो जब मैं वो लेकर के गया तो दादी ने मुझे, दीदी ने कान में कहा कि जब ये तुम पहन के चलेगा जाएगा तो लोग ये नहीं समझेंगे कि संस्था कोई गरीब है, अभी तक भावना बैठी हुई है सबके अंदर, तो इसको तुम पहनेगा ना तो तुमको सहज छुट्टी मिल जाएगी यहाँ आने की। तो हम जब उसको लेकर के गए और दादी को मैंने बाबा को ऐसे ही सामने बोला कि बाबा मुझे अभी समर्पित होके सेवा करनी है, तो बाबा तो बहुत मुस्कुराए, बाबा कुछ जवाब नहीं दिए लेकिन बोला दीदी दादी से तुम मिलना, अलग से मिलना। तो जब मैं दादी जी से मिल रहा था, बगीचा आप लोग देखेंगे पांडव भवन में बगीचा जो कुटिया के पास है, उस झूले पर एक तरफ दादी बैठी एक तरफ मैं बैठा और दादी जी ने मुझे पूरा इतिहास पूछना शुरू किया, क्या करते हो, कितना पढ़ाई किया है, परिवार में कौन कौन है। जब मैंने बोला मैं अपने परिवार में इकलौता बेटा हूँ, मेरे पिताजी 3 भाई हैं उनके बीच में मैं अकेला हूँ, तो दादी मुझे ऐसे देखती है तुमको छुट्टी कैसे मिलेगी। तो हमने कहा दादी आप हमको छुट्टी देंगी तो हम छुट्टी ले लेंगे। बोलिए अच्छा आप ऐसा करना 1 साल और पढ़ लो, फिर लास्ट में जब पेपर हो जाए तो पिताजी की लिखित छुट्टी लेना और अगर वो छुट्टी दें तो आ जाना। मैं यहाँ मधुबन से जब गया तो इतना भरपूर था, इतना संपन्न था, इतनी सब प्राप्तियाँ हुई थी, मुझे वो गांव अच्छा ही नहीं लगे। पढ़ा लिखा 1 साल पढ़ाई किया और पिताजी को जब सुनाया कि ऐसे ऐसे दादी जी ने कहा था तो बोले तुम्हारी दिल है रहने की, अरे तुमको अगर ये भाग्य मिले, भगवान जब डायरेक्ट धरती पर आया उसके यज्ञ में सेवा करने का चांस मिल जाए, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। मैं अभी चिट्ठी लिख के देता हूँ। और उन्होंने ऐसे युक्ति से चिट्ठी लिखी कि ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि जो मेरे बच्चे को आपने सेलेक्ट किया है यज्ञ के अंदर रखने के लिए, और जब ये समर्पित हो जाएगा तो हमारा भी बाबा ही है, हम भी समर्पित हो जाएंगे। तो ड्रामा अनुसार उनको भी 5-6 साल के बाद समर्पित होने का चांस मिल गया। ये इतिहास तो बहुत लंबा है लेकिन मैं आज बाबा की आपको 2 विशेषताएं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि 44 वर्षों तक 44 ईयर्स बाबा के अव्यक्त पार्ट के साथ मेरा पार्ट रहा है। बाबा ने जितना बोला है 44 साल में इन्हीं उंगलियों ने लिखा है। पहले मैं हाथ से लिखता था, फिर दीदी ने देखा है रात भर लिखता रहता है, क्योंकि बाबा शाम को 7 बजे आते थे और कभी कभी सवेरे 8-9 बजे तक रहते थे, 12 घंटा 14 घंटा। तो मैं सारी रात बैठ करके लिखता रहता था। तो फिर दीदी ने थोड़े समय के बाद, मैं समझता हूँ 7-8 साल के बाद, मुझे एक टेप मशीन दी कि तुम रिकॉर्डिंग कर लिया करो, कभी जाते हो उठते हो तो फिर टाइप किया करो। लेकिन धीरे धीरे जब कंप्यूटर युग आया तब डायरेक्ट टाइप करना, बाबा बोलता जाता था मैं टाइप करता, डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ड्रामानुसार ये भी सौभाग्य मिला कि बाबा बोले और मैं लिखूं। जितने वरदान बाबा ने एक एक ब्राह्मण बच्चे को, देश विदेश वालों को दिए, रात भर वो सब लिखता था और सवेरे टाइप करके उनको देता था। तो मैंने देखा कि साकार ने जो साकार में पालना दी उसकी पूरी भासना अव्यक्त रूप से बच्चों को दी, और एक एक अपनी क्वालिटी जो ब्रह्मा ने किया उसको ही फॉलो करना है। मधुबन से इस मास के लिए हमने पत्र पुष्प के साथ बाबा के 31 कदम भेजे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, और वो बाबा ने अव्यक्त रूप में डायरेक्ट खुद ही सुनाए हैं। तो ये 2 कदम बाबा के, क्योंकि जिस दिन से बाबा प्रवेश हुए उस दिन से बाबा की कंपनी तो थी ही, लेकिन बाबा उसके साथ कंबाइंड हो गए। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को कोई अलग नहीं कर सकता था, कोई नहीं कह सकता था कि कब बाबा आया और कब गया, इतना कंबाइंड स्वरूप था। भले बाबा कभी कभी रमणीकता से कहते हैं कि शिव बाबा इस रथ में अगर सदा सवारी करेगा तो ये थक जाएगा, इसलिए बाबा सदा नहीं रहता, आता और चला जाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को ऐसा साथी बनाया, ऐसा कंबाइंड रहा, जो आप 5-7 दिन से एक मुरलियों की लहर सुन रहे हो बच्चे, अगर ब्रह्मा बाबा को याद नहीं कर रहे हो, ब्रह्मा बाबा को कई बच्चे कहते हैं मिथ्याभिमान में आकर के, मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, तो ब्रह्मा के बिना कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि ये साकार माध्यम है और इसके द्वारा आप शिव बाबा से मिल सकते हो। एक मंदिर में मैं गया था, मुझे बहुत रमणीक बात लगी इसलिए सुनाता हूँ। मंदिर शिव बाबा का था और उसके आगे एक नंदी रखा था, बहुत बड़ा नंदी था। मुझे कहने लगे वहां पर कि इस नंदी के कान में आप कुछ भी बोल दो शिव बाबा सुन लेगा। मैंने कहा नंदी बाहर रखा है, शिव बाबा अंदर बैठा है, और इसके कान में बोल दो तो शिव बाबा सुन लेगा। अब भक्तों को तो शायद बनाने वालों को पता नहीं क्या अर्थ मालूम था, लेकिन आज हम सब देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा के कान में कुछ भी बोल दो तो शिव बाबा सुन लेता है। तो इतना कंबाइंड दोनों हो गए, जो कंबाइंड रहते रहते, साथ रहते रहते समान बन गए, और आज 47 साल से समान रूप से सेवाएं कर रहे हैं। अभी कोई अंतर कर सकता है कि शिव बाबा है या ये ब्रह्मा बाबा है? चलो साकार के समय की मुरलियों में कॉन्ट्रास्ट कभी कभी स्पष्ट है, ये महावाक्य शिव बाबा के हैं, ये महावाक्य ब्रह्मा बाबा के हैं। ब्रह्मा बाबा के अपने अनुभव हैं, प्रैक्टिकल क्षेत्र के अंदर बाबा कभी कभी, उस समय ट्रांजिस्टर था रेडियो, बाबा उसको सुन लेता था समाचार, और उन समाचारों के आधार से बाबा मुरली चला देता था कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो उसमें शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा के महावाक्य और उनके अनुभव मिक्स हैं, और स्पष्ट दिखाई देता है कि ब्रह्मा बाबा कह रहा है ये शिव बाबा कह रहा है। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हो गए तो इतना दोनों समान बन गए, कंबाइंड रहते रहते। जैसे कहते हैं कि अगर लोहा पारस के साथ मिल जाए टच भी हो जाए तो समान बन जाता है, और जो कंबाइंड रहेगा वो कैसा होगा। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ऐसे कंबाइंड रहे जो आज हम अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों एक जैसे समानता से हम सबकी पालना कर रहे हैं। तो वो कंबाइंड स्वरूप, जैसे शरीर के साथ आत्मा कंबाइंड है, अगर आत्मा अलग हो जाए तो शरीर कोई काम का नहीं। शरीर काम न कर रहा हो तो आत्मा शरीर में होते हुए भी कोई काम नहीं कर पाती है। दोनों का बहुत गहरा संबंध है, ये भी एक कंबाइंड स्वरूप है। ऐसे ही बाप और दादा का कंबाइंड स्वरूप है, और बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप भी बाबा के साथ कंबाइंड रहो, मैं और मेरा बाबा, इसके सिवाय तीसरा कोई नहीं। तो ये भी एक बहुत सुंदर कंबाइंड रूप है, और ये कंबाइंड रूप जिसको बाबा कहते हैं बच्चे, शिव और शक्ति कंबाइंड रूप है, पांडव और पांडव पति का कंबाइंड रूप है। तो ऐसे अगर हम पांडव पति के साथ, पांडव शिव के साथ शक्तियां कंबाइंड होकर के रहती हैं, तो उससे बहुत से फायदे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं शिव बाबा की हस्ती क्या है। वो सर्वशक्तिमान है, हजारों भुजाओं वाला है, जो चाहे वो करा सकता है, और इसकी इतनी बड़ी अथॉरिटी जिसके साथ साथ रहती हो। भक्तों ने तो श्रद्धा से एक सिद्धांत बना करके कह दिया वो सबके अंदर है, सर्वव्यापी है। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं तो आज यही अनुभव करते हैं, चलते फिरते कर्म करते कोई भी कार्य करते एक बाबा ही करा रहा है, करण करावनहार बाबा की ये प्रभु लीला चल रही है। तो करणहार और करावनहार ये दोनों कंबाइंड है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। आत्मा अगर करणहार है तो बाबा करावनहार है, और बाबा कई बार ये भी कहते हैं, हे आत्मा तुम करावनहार हो, ये कर्म इंद्रियां करणहार हैं, ये कर रही हैं, तुम करा रहा है। लेकिन अगर ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा करणहार हूं और बाबा करावनहार है, तो एक निमित्त भाव आ जाता है आत्मा मैंपन से, अहम से, किसी भी प्रकार के बुद्धि के अभिमान से फ्री हो जाती है। तो इसलिए कंबाइंड स्वरूप की स्मृति, ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल जीवन की एक दो बातें मैं आपको सुनाता हूं कि ब्रह्मा बाबा के जीवन में ज्ञान और स्नेह कंबाइंड था। स्नेह इतना था, इतना प्रिय था, बच्चों को प्यार दे करके, स्नेह दे करके, अपनेपन की फीलिंग दे करके अपना बना लेता था। लेकिन स्नेह के साथ साथ ज्ञान उनके जीवन में छलकता था, ज्ञानी तो आत्मा थी। तो बाबा की प्रेम और ज्ञान की बैलेंस की, कंबाइंड स्वरूप की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ। 31 तारीख को बाबा ने शब्द रिपीट किया था, क्योंकि देखा सब बच्चे प्यार के सागर में डूबे हुए हैं। तो बाबा ने एक लाइन में लास्ट में कहा कि अगर प्रेम स्वरूप खुशी है तो गायब हो सकती है, इसलिए ज्ञान स्वरूप खुशी अविनाशी रहती है। प्रेम के साथ ज्ञान जरूरी है। तो जब साकार में बाबा के दो बहुत प्रिय बच्चे थे, एक तो दादा विश्व किशोर की कहानी शायद कोई कोई को मालूम हो, जो पुराने हैं, किताबें पढ़ी हैं या दादियों के अनुभव सुने हैं। आप सब जानते हैं कि बाबा का लौकिक में भाई का बेटा बिस्किशोर दादा थे, उनकी धर्मपत्नी का नाम संतरी दादी था जिनकी बात हमने की। तो बिस्किशोर दादा बाबा के राइट हैंड थे, बाबा को बहुत बहुत प्रिय थे। बाबा का उनसे इतना अधिक प्यार था कि एक बार वो बीमार पड़े तो उनको बॉम्बे जाना था। 67 में दादा पहली बार जब बाबा से विदाई लेने लगे तो बाबा ने कहा कैमरे वाले को बुला के ले आओ, बच्चे का फोटो निकालना है। बाबा वैसे फोटो निकालने नहीं देते थे। और हिस्ट्री हाल में आप जाएंगे तो दादा का, बिस्किशोर दादा का और बाबा का और रमेश भाई का, ये तीन का एक ही साथ फोटो है। तो वो फोटो निकलवाया और बहुत प्यार से विदाई दी उस बच्चे को। बाबा तो जानता था कि अभी वापस आने वाला नहीं है, लेकिन इतना प्यार किया, इतना स्नेह दिया। तो जब यहाँ से बॉम्बे गया, ऑपरेशन छोटा ही था, ऑपरेशन हुआ तो बाबा यहाँ उसको रात भर सकास देते रहे प्यार में। पूरी रात योग किया बाबा ने। उस समय की मुरलियाँ इस सर्च लाइट पर चली हैं जो अभी कभी कभी रिपीट होती हैं कि बच्चे रात रात को जाग करके सकास देना चाहिए, बाबा सर्च लाइट है। तो बाबा उसको रात भर सकास देते रहे क्योंकि उसको बहुत दर्द होता था ऑपरेशन का। लेकिन जब अचानक उसने कुछ दिन के बाद, मैं समझता हूँ ऑपरेशन के 5-6 दिन के बाद जब शरीर छूटा, वहीं छोड़ दिया, तो सब बच्चों ने सोचा बाबा का इतना प्रिय बच्चा था, इसको हम मधुबन में लेके चलेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे मिट्टी को यहाँ क्यों लाओगे, उसको वहीं जला दो। लाने नहीं दिया। इतना ज्ञान स्वरूप उस समय बाबा अथॉरिटी बन गया कि बच्चे जरा भी कोई अटैचमेंट नहीं। फिर उसके कई लोगों ने फोटो लेके आए तो बाबा ने कहा ये बच्चे फाड़ दो, फोटो फोटो क्यों रखना है, जो शरीर छोड़ के चला गया वो दिल में रहता है, फोटो क्या करेंगे। इसलिए बाबा ने उसका फोटो भी नहीं रखने दिया। इतना बाबा स्ट्रिक्ट हो गए। कहाँ एकदम प्यार के सागर थे, बच्चों के साथ इतना प्यार था कि रात भर सकास दी, उसका फोटो यहाँ निकलवाया साथ में, इनका मिट्टी का फोटो लाके क्या करोगे, उसकी क्या जरूरत है। तो इतना एकदम नष्टो मोहा, ज्ञानी माना नष्टो मोहा बन गए। एक ओर प्यार का सागर और दूसरी ओर ज्ञान का स्वरूप, ये बैलेंस था और ये कंबाइंड रूप था। जैसे इस समय हम साकार में देख रहे हैं बाबा को, जब अव्यक्त में से साकार में बाबा आते हैं तो बच्चों के बीच में इतना प्यार, इतना स्नेह देते हैं, न्यारे और प्यारेपन का जैसे कंबाइंड रूप है। एकदम प्यार का सागर बन जाते और एकदम ऐसे आंख बंद करके डिटैच हो जाते हैं, जैसे जानते ही नहीं, एकदम न्यारे हो जाते हैं। तो ये भी एक उनका कंबाइंड स्वरूप है। ऐसे ही हम सबको बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कंबाइंड स्वरूप बनाओ। आत्मा और शरीर कंबाइंड है, बाबा और हम कंबाइंड हैं, और कोई भी सेवा कर रहे हो कर्म और योग कंबाइंड करो। ऐसे नहीं कर्म के समय योग छूट जाए और योग में बैठो तो सेवा छूट जाए। तो हम सबको बाबा ने सब कंबाइंड स्वरूप में रहने की, बैलेंस से चलने की बात सिखाई है। कई बाबा के बच्चे सेवा के लिए बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं और सेवा के पीछे कईयों की स्थिति भी बिगड़ जाती है। बाबा उनको कहते हैं बच्चे अगर स्थिति ठीक नहीं है और सेवा कर रहे हो तो उस सेवा का क्या फायदा होगा। इसलिए सेवा और स्थिति का भी कंबाइंड स्वरूप चाहिए। सेवाएं साथ साथ हैं लेकिन स्थिति पहले है, स्व सेवा पहले है फिर विश्व सेवा है। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा इसके साथ भी कंबाइंड रहे तो कंबाइंड स्वरूप जैसे बाबा ने बनाया, प्रैक्टिकल हम सबको करके सिखाया। कैसे बाबा सेवा का उमंग उत्साह भी दिलाते थे। एक दिन बहुत अच्छा उमंग उत्साह, तो दूसरी मुरली में बाबा कहेगा बच्चे तपस्या करो, योग ही तुम्हारे विकर्मों को विनाश करेगा, योग से ही आत्मा पावन बनेगी, योग ही मूल है। तो एक तरफ बाबा सेवा पर ध्यान खिंचवाते थे तो दूसरी तरफ तपस्या पर। ये बैलेंस और कंबाइंड स्वरूप इसका भी बाबा ने प्रैक्टिकल किया और दादियों ने उसको खूब बहु फॉलो किया जो बाबा ने कहा। आज हम देख रहे हैं कि गुलजार दादी बाबा को साथ रखते रखते जैसे कंबाइंड हो गई है। अभी आप इतने वर्षों में आप देखेंगे कि बाबा और दादी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, कंबाइंड होते होते समान बन गए। कब बाबा आता है, कब बच्चों के साथ मुरली सुनाता है, कब चला जाता है, कई बार वो भी पता नहीं चलता। इतना कंबाइंड स्वरूप है बाबा और दादी का। तो हम सभी भी बाबा को अगर सदा अपना साथी बना करके रखते हैं, कौन चीज कंबाइंड रह सकती है? स्थूल में तो कंबाइंड नहीं रह सकते। बाबा एक बार बहुत रमणीक मुरली चलाई थी, जोड़ी भी समान होगी तो कंबाइंड रहेगी। अगर एक लंबी हो, एक नाटी हो, एक बहुत मोटा, एक एकदम पतला हो, तो जोड़ी कैसी लगेगी? इसलिए बाबा चाहता है कि जैसे बाबा है वैसे मेरे बच्चे समान बन जाए, तो कंबाइंड होना सहज है। तो बाबा कैसा है? एवर प्योर है, बहुत शुद्ध लाइट है। और बाबा के साथ कंबाइंड होना माना हमें भी उसी लाइट में, वही हल्केपन में, जितना हल्कापन है, जितना लाइट है आत्मा, डबल लाइट है, उतना बाबा के साथ वो कंबाइंड रह सकती है। अगर मेरे पास बहुत व्यर्थ का बोझ है, संस्कारों का बोझ है, जवाबदारियों का बोझ है, और बाबा लाइट है, तो उसकी जोड़ी बनेगी नहीं, वो कंबाइंड होगा ही नहीं। इसलिए जो बाबा के बच्चे अपनी सब जवाबदारियां बाबा को अर्पित करके एकदम लाइट होकर के रहते हैं, हल्के होकर के बाबा बैठा है, बाबा करा रहा है, बिल्कुल जवाबदारियां समर्पित की, हल्के हो गए, अपने लाइट स्वरूप में स्थित हो गए और बाबा की लाइट के साथ जुड़ गए, कंबाइंड हो गए। वो प्योरिटी की पवित्र लाइट बाबा की जब हमारे सामने आती है, तो आत्मा और परमात्मा, जैसे भक्ति के अंदर कहा है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ये तो बाबा कहता है लीन हो जाएगी तो समाप्त हो जाएगी, ये तो विनाशी सत्ता नहीं है, ये तो अविनाशी है, लीन नहीं होती, लेकिन प्यार में खो जाती है, समा जाती है, अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देते, ऐसे समा जाती जैसे मैं हूं ही नहीं, मैंपन समाप्त हो जाता है, एकदम आत्मा सरल निरहंकारी बन जाती है, जैसा बाबा वैसा बच्चा बन जाए। तो ये बाबा का जो कंबाइंड रूप था, हमेशा बाबा ने हर पल यही कहा, बाबा कराने वाला है, बाबा मुरली चलाने वाला है, अरे बच्चे इस देहधारी को नहीं देखना, इस देह का फोटो नहीं रखना। तो बाबा ने इस देह से एकदम उपराम करके आत्मा परमात्मा कंबाइंड होकर के रहे, और अपने बच्चों को भी यही पाठ पढ़ाते हैं, बच्चे सदा कंबाइंड होकर के रहना। तो मैं समझता हूँ आप ऐसे दिन पर आए हैं, कल पूरा दिन कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना, अलग नहीं है बाबा हमसे, हमारे साथ साथ है, लेकिन उनके साथ रहेगा जो बहुत लाइट रहेगा। अगर कोई भी रस आकर्षित करेगा, कईयों को बोलने का बड़ा रस है, कहीं ना कहीं बोलते रहेंगे, बोलने के बिना रह ही नहीं पाते हैं। अगर कोई को आवाज में आने का रस है, तो वो अव्यक्त स्थिति का सुंदर रस नहीं ले सकता है। इसलिए अव्यक्त स्थिति और आवाज ये भी कंबाइंड स्वरूप चाहिए, जरूरत है, बोलो, लेकिन बाबा ने मंत्र दिया है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो जरूरी है वही बोलो, जो आवश्यक है वही बोलो। अगर इस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये आवाज और अव्यक्त स्थिति भी कंबाइंड हो जाएगी। और अंतिम सेवा में बाबा हमेशा कहते हैं कि आवाज में आओगे तो आपकी मनसा अगर शक्तिशाली है, अव्यक्त से व्यक्त में आकर के सेवा करोगे, तो उसकी रिजल्ट बहुत अच्छी होगी, प्रभाव निकलेगा। तो ये भी एक कंबाइंड स्वरूप बना करके हम रहें। तो कल के दिन आप सब इस अभ्यास में रहना, अमृत वेले से ही, कि मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, आवाज में आना ही नहीं है, और जरूरी है तो धीरे से कोई बात की और चुप हो गए, तो सवेरे से ही अव्यक्त वतन बन जाएगा। क्योंकि अभी तो बहुत संख्या बढ़ती जाती है, और जब ज़्यादा संख्या होती है तो खाने में, इधर उधर बैठने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आवाज़ होती है। लेकिन अगर हम सब के अंदर एक संकल्प हो कि अव्यक्त दिवस है, और इसमें हम सबको, बाबा कहते हैं बच्चे भोलानाथ बहुत राजी हो जाता है आज के दिन, आप जो चाहे उसको रिझा करके, मना करके वरदान ले सकते हो, तो अमृत वेले से ही सभी भले बाबा की कुटिया में जाएंगे, कमरे में जाएंगे, यहाँ भी चार धाम की यात्रा आपको कराई जाएगी, तो यहाँ भी यात्रा करते करते आप बाबा के प्यार में खो जाना, समा जाना, आवाज की दुनिया से परे हो जाना। और दूसरा बाबा का स्वरूप जो था, क्योंकि बाबा को कोई चीज कोई दे के जाता था, बाबा बहुत प्यार से ले लेते थे और उसी समय वो चला गया, उसके बाद दूसरे बच्चे को दे देते थे। कोई बहनें आती थी, बहुत अच्छे अच्छे गर्म स्वेटर बना के लाती थी, बाबा को पहना दिया, बाबा ने प्यार से ले लिया, बच्ची बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और वो गई और दूसरा बच्चा आया, बाबा ने फट से उसको पहना दिया, अपने पास नहीं रखा। एक देने की बहुत प्यार की बाबा की भावना रहती थी, कोई बच्चा खाली न जाए। ये जो सिस्टम बाबा ने चलाई सौगात की, साकार के समय की है, जब मैं पहली पहली बार आया था, इतनी सौगातें दी गई मुझे, इतनी सौगातें मिली, जो मैंने कहा मैं कहां इतनी सब उठा के ले जाऊंगा, बर्तन से लेकर के सब कुछ था, हर एक चीज सौगात में मिल गई थी। तो बाबा ने ये सिस्टम बनाई यज्ञ के अंदर, कोई भी बच्चे आते हैं तो उनको स्थूल और सूक्ष्म हर प्रकार से भरपूर करना है। अब भरपूर तो वही कर सकता है, दाता वही बन सकता है जो संपन्न हो, जिसके पास सब कुछ हो। तो बाबा ने एक बहुत सुंदर विधि बताई है, और अगर सभी ब्राह्मण आत्मा इस विधि को अपना लें तो बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है, कि मुझे सबको देना है, कुछ किसी से लेना नहीं है, आत्माओं से कोई भी तमन्ना नहीं रखना। क्या देंगे मुझे? प्यार देंगी, रिगार्ड देंगी, मान देंगी, सम्मान देंगी, कोई वस्तु देंगी, कोई सौगात देंगी, किस लिए देंगी? अगर दे रही हैं तो मुझे चाहिए क्या? कोई मेरी आसक्ति है क्या उसमें? इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि आत्माओं से लेने की बजाय आत्माओं को देना है। जो भी मेरे सामने आए, कुछ न कुछ ले, कुछ न कुछ उनको मिले, स्नेह दो, सम्मान दो, सत्कार दो, सकास दो, पवित्र दृष्टि की शक्ति दे दो। जो कुछ बाबा ने हमें दिया है वो हम देते चले, लें एक से, लेना एक से और देना सबको है। तो ब्रह्मा बाबा का एक पहले से ही स्लोगन रहा, बच्चे किसी के आगे हाथ ऐसे नहीं करना, मांगने से तो मरना भला, कोई से मांगना नहीं, कोई से लेने की तमन्ना नहीं रखना, देते चलो, देने से कभी खुटेगा नहीं, भरपूर होता जाएगा। और हमने देखा शुरू से लेकर के हमारी दादियों ने वही पद्धति, वही सिद्धांत जो ब्रह्मा बाबा ने रखे वो अभी तक कायम रखे हैं। जो उनके पास जाता है, ये सौगात दे दो, ये टोली दे दो, ये चीज दे दो, वह देते जाते हैं, भरपूर करके ही भेजते हैं। ये नहीं कहते ये भी कुछ दे तो मैं दूं, कई ये आस रखते हैं, किसने तो कुछ दिया ही नहीं और मैं ही सब कुछ दे दिया इसको। तो बाबा कई बार बहुत प्यार से कहते हैं, बच्चे ये भी कामना नहीं रखो, ये बदले, ये तो कुछ सुधरे, ये तो कुछ झुके, ये भी तो एक लेने की भावना हो गई ना, वो दे या न दे, झुके या न झुके, बदले या न बदले, मुझे बदल करके उसको बदलना है, मुझे उसको देना है। हम अगर रिगार्ड और रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी देने के बिना नहीं रह सकता है। बाबा ने इतना हम सब बच्चों को दिया है, दिल से दिया है, भरपूर किया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी प्रकार की जो मेरे जीवन में न प्राप्त हुई हो। भले हम सब जानते हैं कि ये गायन जो है वो देवताओं के लिए है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, लेकिन बाबा ने कुछ समय से बात को चेंज किया है। आप देखेंगे अव्यक्त मुरलियों में बाबा कहता है, अप्राप्त नहीं कोई शक्ति, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मेरे ब्राह्मण बच्चों के खजाने में। सिर्फ ताली बजा रहे हो कि है, प्रैक्टिकल है। और अप्राप्ति अगर नहीं है तो क्यों किसी के पीछे हम झुकेंगे, भागेंगे? क्या चाहिए मुझे उनसे, कौन सी चीज हमको चाहिए? अगर कुछ कोई दे भी रहा है तो बाबा के यज्ञ में दे, बाबा को प्रत्यक्ष करने में लगाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा विशेष व्यक्ति आता भी है तो उससे हमारी क्या कामना है? हमको जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, क्या हम उससे लेना चाहते हैं? क्यों हम इतने प्यार से सेवा करते हैं? अगर वो कुछ भी करेगा अपना भाग्य सब बना ले, भगवान के सेवा के कार्य में मदद दे करके अपना भाग्य बना ले, बाकी व्यक्तिगत रूप में मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों हम किसी के आगे इस तरह से झुकेंगे? बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया और सबसे बड़ा धन तो संतोष धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है। जिसके पास गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, ज्ञान धन है, उसके पास सब कुछ अखुट है, कोई चीज की कमी नहीं आ सकती। इसलिए बाबा ने एक बार कहा था कि आप बच्चे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, सबसे ज्यादा धनवान हो, भले स्थूल में कोई पैसे न भी हो किसी के पास, लेकिन बाबा के बच्चों के पास जो ज्ञान धन है, गुणों का धन है, श्रेष्ठ चरित्र का धन है, शक्तियों का धन है, इस धन के आगे वो सब धन अपने आप पीछे पीछे आ जाता। इसलिए कभी भी उसके पीछे जाने की, भागने की जरूरत नहीं है। कोई धन दे और चरित्र पर आंख दिखाए, उंगली उठाए, तो बाबा को क्या कहेगा? बच्चे इसके धन को मार दो, लात नहीं चाहिए। क्या करना है हमको ऐसे पैसे को? क्या करना है जो कोई के ऊपर बुरी नजर रखे और पैसा दे? तो बाबा ने कभी भी किसी ऐसे पैसे को स्वीकार नहीं किया। कई बाबा के बच्चे उस समय साकार के समय कहते थे, बाबा जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, कर लेना, है हमारे पास, बाबा तुम अपने पास रख ले, मुझे नहीं चाहिए। जरूरत पड़े तो याद करना, बाबा को क्या जरूरत है तुम्हारी? क्या बाबा तो शाम का सा है, जिसको चाहे वो माला माल बना दे। एक मुरली में बाबा ने कहा कि अगर मैं किसी एक बच्चे को टच कर दूं, सुनना मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं एक किसी बच्चे को टच कर दूं तो पूरे यज्ञ को चला सकता है। अब इतने सारे बच्चे आते हैं, सबको बहने कहती हैं, तुम इतना तो यज्ञ में डालो, तुम इतना तो यज्ञ में दो। बाबा चाहे तो उनसे एक से ही करा सकता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा जानता है कि अगर ये गरीब गरीब बच्चे, बाबा के बच्चे सच्चे दिल से बाबा की यज्ञ में बीज बोलेंगे तो इनको एक का कई गुना होकर रिटर्न मिल जाएगा। ये भाग्य बनाने का समय है। ऐसा न हो कि बाबा भगवान के घर में आए और इतनी पालना, इतनी सेवा, इतना खान पान, इतनी सब व्यवस्थाएं मिलने के बाद भी और वो कुछ भी न करे, उसके ऊपर बोझ चढ़ जाए, तो बाबा को भी रहम आता है कि अगर इसके ऊपर 5,000 का खर्चा हो रहा है तो कम से कम ये कुछ तो अपना सफल कर ले। ऐसा न हो कि 5,000 की बजाय वो 500 रुपया डाल के चला जाए और उसके ऊपर बोझ चढ़ जाए। इसलिए कहा जाता है, कोई कोई बहने कहती है, लेकिन कहने की भी वास्तव में जरूरत नहीं है। बाबा के बच्चे सब समझदार हैं, सब बुद्धिमान है। इसलिए बाबा ने कोई सिस्टम ही नहीं बनाई कि इतना तुमको देना है। बाबा तो दाता है, खुद दे रहा है, लुटा रहा है, और जिसको जितना भाग्य बनाना है वो बना लेगा। तो इसलिए जो जितना भाग्य गुप्त रीति से अपना बनाता है, वो अपना भाग्य बनाता है, वो देता नहीं है। और ये भी एक बात ध्यान रखना, बाबा अंडरलाइन करते हैं कि ब्राह्मण कभी भी ब्राह्मणों को दान नहीं देते। वो सहयोग दे सकते हैं, दान नहीं दे सकते। तो हम कभी भी न कहेंगे हमने इसको दान दिया। हम एक दूसरे के मददगार बन सकते हैं, साथी बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन हम किसी को दान नहीं दे सकते। तो हम सब बाबा के बच्चे न दान ले सकते हैं न दे सकते हैं, लेकिन सहयोग तो जरूर दे सकते हैं, स्नेह दे सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं, जो आवश्यकताएं वो पूरी करा सकते हैं। तो हम सबको बाबा ऐसा दातापन की भावना सिखाता है। और ये सब ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल किया। आप सब समझते होंगे, देख सुना होगा इतिहास में कि बाबा के सामने जिस प्रकार के पेपर आए, जब बेगरी पार्ट शुरू हुआ तो बहुत बड़े पेपर्स आना शुरू हो गए। और बाबा की वो चतुराई थी कि अगर वो पेपर नहीं लेता तो ये सेवाएं शुरू नहीं होती, बहनें बाहर जाती नहीं, केंद्र नहीं खुलते। तो ऐसा पेपर लिया जो यहाँ आते ही, कराची में तो कहते थे ब्रह्मा कुमारी ओम मंडली वाले पिस्ता बादाम खाते हैं, पिस्ता बादाम इनका भोजन है। बहुत प्यार से बाबा ने अच्छी तरह से 350-400 भाई बहनों को पाला। लेकिन जब मधुबन में आए, यहाँ आबू में आए, पहले पहले कोठी में आते ही ब्रज कोठी में सब कुटकी हो गया, क्योंकि जो लाए थे वो खा पी के पूरा कर दिया, कुछ स्टीमर में खर्चा हो गया, कुछ ट्रेन में खर्चा हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो आते ही एकदम बेगरी पार्ट शुरू हो गया, दोपहर का भोजन बनना है और सुबह भंडारे के अंदर एक रुपया भी नहीं है। आप समझ सकते हो कितना माँ बाप, अगर किसी माँ बाप के पास ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उसके बच्चे 5-6 खाने वाले हों, उसका क्या हाल होगा। लेकिन बाबा बेफिक्र बादशाह, क्यों बेफिक्र बादशाह, ये तो बाबा के बच्चे हैं ना, उसने इनको लाया है, अपने आप खिलाएगा। और सचमुच 10-11 बजे जब पोस्ट आती थी, वो पोस्ट में या तो खुले लिफाफे में पैसे आ जाते थे या चेक ड्राफ्ट से आ जाते थे, और 1 बजे रोज भोजन बन जाता था, बेल बज जाती थी। तो बाबा ने एक दिन भी भूखा नहीं रखा, लेकिन बहुत नशे से बाबा कहता था, बच्चे तुम्हारे पास इतना धन है ज्ञान का, गुणों का, जाओ इसको बांटो। और उसी नशे से बहने गई, भले कुछ नहीं खाते पीते थे, क्या खाते थे, अगर जानकी दादी का इतिहास सुनो तो सुनाती है कि हम छोटे छोटे आलू ले लेते थे, और आलू काट करके उसको रसा पानी में डुबो देते, बना लेते, नमक डाल करके पका लेते थे, और उसी के साथ रोटी खा लेते थे। मिट्टी की कढ़ी वो ले लेते थे बर्तन, उसी में बना के खा लेते थे, कुछ नहीं था, ऐसा बेगरी पार्ट था। लेकिन जो नशा था, जो रूहानियत थी, जो रूहाब था, उसके आधार से जाते ही ऐसे दृष्टि देती थी तो सारी सभा की सभा ट्रांस में चली जाती थी। इसी से सेंटर खुलना शुरू हुए, और सेंटर खुले तो बच्चे बाबा के आए, और आए तो आज हम देख रहे हैं कितनी वृद्धि हुई है, कितना विस्तार हुआ है, क्या था और क्या हो गया। तो बाबा की ये कमाल है कि हम सबको बाबा ने दाता बनाया है, कहा बच्चे किसी से मांगना नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, तुम्हारे पास जो कुछ है, जो है वो दृष्टि से, बोल से, मुस्कुराहट से दो, देते चलो, देते चलो, और जितना दोगे उतना आपके पास कई गुना हो जाएगा। ये विशेषताएं ऐसी हैं, अविनाशी धन ऐसा है जो जितना दान करेगा उसके पास कई गुना हो जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा, खुटने वाला नहीं है। और विनाशी धन तो इसके पीछे पीछे अपने आप आता है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे बहुत दातापन के स्वरूप में रहें, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं, किसी के आगे कोई चीज की तमन्ना लेकर के, कामना लेकर के न जाएं कि इसके पास इस, कई लोग क्या करते हैं, इसकी सेवा करेंगे ना तो ये सहयोग मिलेगा, इसके लिए मनसा सेवा करो, इसके लिए योग करो, बाबा कहता है ऐसी भी तमन्ना क्या रखते हो, इसके लिए सेवा कर रहे हो क्या, अरे उसकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा, उसका भाग्य बन जाएगा, वो सतयुग का अपना अधिकार प्राप्त कर लेगा, अपना वर्षा ले लेगा, ये भावना रख करके उसको योगदान दो। बाकी ये सहयोगी बने, इतना मदद कर देगा, ये जमीन दे देगा, ये दुकान दे देगा, ऐसा कर देगा, ऐसी भावना क्यों रखते हो, लेने की भावना क्यों रखते हो, बाबा देने वाला छप्पर फाड़ के आपको दे देगा, देने में कोई कमी रखेगा ही नहीं, आप क्यों व्यक्ति से कामना रखते हो। इसलिए व्यक्तियों से कोई भी कामना रखोगे तो एक स्लोगन याद रखना, जहां कामनाएं हैं वहां सामना नहीं किया जा सकता है, कोई भी प्रकार की बात कही नहीं जा सकती, अधिकार नहीं रखा जा सकता, इसलिए कोई भी कामनाएं नहीं रखना। एक बाबा, बस बाबा कहता बच्चे ये भी स्लोगन पक्का करो, इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाओं की अविद्या हो जाए। सब बाबा ने इच्छाएं पूरी कर दी हैं, सब तमन्नाएं पूरी की हैं, और कई बार कहता है कि मैं इच्छाएं थोड़ी पूरी करने आया हूं, इच्छाएं तो जन्म पर जन्म लेती जाती हैं, 10 पूरी होंगी और 10 खड़ी हो जाएंगी, लेकिन आवश्यकताएं जरूर पूरी हो जाती हैं, इच्छाओं का तो अंत नहीं होता। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन करके जो बाबा को देना होगा, आवश्यकता होगी, वो अपने आप दे देगा। हम क्यों इच्छा किसी से रखें, ये व्यक्ति अगर ज्ञान में चलेगा, ये स्नेही बनेगा, ये सहयोगी बनेगा तो ऐसी मदद मिलेगी। बाबा कहता बच्चे कोई कामना नहीं रखो, उसकी सेवा निस्वार्थ भाव से करो, जितना आपकी भावनाओं में निस्वार्थपन आ जाएगा, दातापन आ जाएगा, क्षमा भाव आएगा, रहमदिली का भाव आएगा, उतना आप दूसरों को दे सकोगे। समय अनुसार दाता वही बन सकता है जो बहुत ज्ञान युक्त रहम दिल है। इस समय रहम की जरूरत है, बहुत आत्माएं तरस तड़फ रही हैं, दुखी हैं, पुकार रही हैं, आप सब जानते हो। बाबा कई बार मुरली में कहते, बच्चे तुमको सुनाई नहीं देता दुखियों की आवाज, कितना दुखी है, कितना पुकार रहे हैं, कितना परेशान है, आप बच्चे सुनो, उपकार करो, पुकार सुनो, उपकार करो। क्या उपकार करो? कौन उपकार कर सकता है? जिसके पास शुभ भावनाओं का स्टॉक होगा, शुभ चिंतन का स्टॉक होगा, जिसके पास हर शक्ति का स्टॉक होगा, वो तो उपकार कर सकता है। तो हम सब बाबा के बच्चे, एक बाबा से लेकर के अपने आप को भरपूर करके और इनके ऊपर उपकार करें कि हर आत्मा को मुक्ति मिले, हर आत्मा को शक्ति मिले, हर आत्मा इस दुखों से छूट जाए। यही एक अंदर की भावना है और इसी भावना के साथ योग भी करने हैं। करते हो तो सवेरे सवेरे कम से कम अगर पौना घंटा अपने लिए कर रहे हो तो 15 मिनट इन दुखियों के लिए जरूर करो कि इनके सबके दुख दूर हो जाएं। ये सब अपना अधिकार ले लें, मुक्ति का, जीवन मुक्ति का जो चाहिए बाबा से ले लें। बाबा भी दाता बन करके बच्चों के बीच में आया हुआ है, इसलिए हम सब बाबा के बच्चे भी मास्टर दाता बन करके, क्षमा सागर बन करके, रहम दिल बन करके, ये ऐसे करते हैं तो ऐसे भोगेंगे ही, ऐसी भावना नहीं। कुछ न कुछ तो गलतियां हुई हैं सबसे, लेकिन हम क्यों उनके लिए ऐसा सोचें कि इन्होंने ऐसा किया है इसलिए ऐसे हो रहा है? नहीं, हम सब बहुत शुभ चिंतक वृत्ति से, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, अपनी पवित्र मनसा से, अपने बहुत शुभ संकल्पों से ऐसी आत्माओं को इमर्ज करें और सवेरे सवेरे कम से कम 15 मिनट शुभ चिंतक वृत्ति से इन आत्माओं को शांति, शक्ति, पवित्रता की शक्ति दान करें। ये तो कर सकते हैं ना, ये तो दे सकते हैं ना मास्टर दाता बन करके। तो और कुछ भले नहीं दो, लेकिन सकास दो, स्नेह दो, शक्ति दो, सम्मान दो, जो बाबा ने दिया है वो मुख से दो, वाइब्रेशन से दो, नैनों से दो, और मास्टर दाता बन करके बाबा के समान बनना है। हम सबको बाबा के समान बनना है। बाबा कहता, बच्चे कोई नया कदम, कोई नया रास्ता लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे कदम पर कदम रख करके चलते चलो। तो बाबा ने सब करके दिखाया और 33 साल साकार रूप में किया और 47 साल अव्यक्त रूप से किया। कल बाबा के 80 वर्ष सेवा के पूरे होने वाले हैं। तो हम सब ने इतनी पालना ली है तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम बाबा की इस पालना का रिटर्न करें। ठीक है, ओम शांति। अभी एक बात याद रखना, 18 जनवरी का दिन है, सब बिल्कुल यहां से उठते ही मौन व्रत को ले लो और एकदम स्थिर होकर के, मन को शांत करके, धैर्यवत होकर के अभी से अव्यक्त मिलन के आनंद में खो जाओ। बाबा से गुड नाइट करके गोदी में जाना और सवेरे से लेकर के उसी लहरों में लहराना। ओम शांति।